Hare Krishna. प्रभात परमहंस प्रेमाचार्य जवाई के श्री बेचन भक्ति अंत स्वामी श्री प्रभात महाराज की श्री श्री गौरताय की श्री श्री राधा राज भाई ललता विशाखा की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की ऑल ग्लोरी श्री समुद्र बोली ऑल ग्लोरी समुद्र बोली ऑल ग्लोरी समुद्र बोली ऑल ग्लोरी श्री गौरी श्री गौरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय
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 यस स्पीक इन हिंदी लुकिंग इन द फेसेस आई डोंट तो मैं हिंदी में बोलूं हिंदी सब समझते हो मैं तो अंग्रेजी में बोल रहा हूं पर मुझे लगता है कि आप लोग आप में जिस बहुत कम को पूरी अंग्रेजी समझ आएगी तो मैं हिंदी में बोलूंगा ओम ज्ञात मैं ज्ञानंजना शलक्या चक्षुरन मिलता नहीं ना तस्मै श्री गुणवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्ट स्थापिता येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयम् ददाति स्वापदम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथन्वितं तं सुदेवं सद्वैतं समधूतम् प्रजना सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पद सहगना ललिता श्रीशाखान्वित हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते सत्ता कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुदे हनुमान जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरे
कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम
हरे कृष्ण तो आज का विषय है राम राज्य है ना कल आप भक्तों ने रामनवमी मनाई थी कई स्थानों में हमने कल मनाई थी कल कई स्थानों में परसों मनाई थी तो राम राज्य का अर्थ क्या है वो समय जब भगवान राम शासन कर रहे, I'll just speak for half an hour or so, how long you all speak? वो समय जबकि 9:30, वो समय जबकि भगवान रामचंद्र जी का शासन चल रहा था इस पृथ्वी पर, भगवान राम कौन है? वो स्वयं भगवान है। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं केवल संक्षेप रूप में ही भगवान राम की लीलाओं का वर्णन कर रहा हूं, क्योंकि अनेक और ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं जिनमें भगवान राम की लीला का वर्णन है। तो भगवान रामचंद्र जी स्वयं भगवान हैं, या उन्हें हम विष्णु तत्व कह सकते हैं। एक है जीव तत्व, दूसरा है विष्णु तत्व। विष्णु तत्व का अर्थ है जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। और भगवान स्वयं क्यों प्रकट होते हैं? यदा यदा ही धर्म से किनारे भवतिर भारत अभ्युत्थानम अधर्म समस्या तदात मनुष्य राम। भगवान स्वयं प्रकट होते हैं किस लिए? धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। तो भगवान राम प्रकट हुए थे त्रेता युग के आरंभ में। हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार चार मुख्य युग हैं, सतयुग, त्रेतयुग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग सबसे पहला युग था, त्रेतयुग चला था लगभग 12 लाख सालों के लिए, द्वापर युग चला था लगभग 8 लाख सालों के लिए, और कलयुग के कितने साल बीत गए हैं? 5,000 साल। तो 20 लाख साल पूर्व भगवान श्री राम इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। कितने साल पहले? 20 लाख साल पहले। आज भी आप उनकी चर्चा करते हो, भारत में ही नहीं सारे विश्व में। ये जो हम राम कथा पर संक्षेप में आज सुनाएंगे, या राम लीला जो आप बचपन से सुनते आए हो, उत्तर भारत में रामलीला का बड़ा उत्सव होता है हर साल, तो ये कोई नई लीला नहीं है। 20 लाख सालों से लोग भगवान राम की महिमा सुनते आ रहे हैं, क्योंकि भगवान है। आप अखबार पढ़ते हो एक दिन और 5 मिनट पढ़ने के बाद फेंक देते हो, पर भगवान कृष्ण की लीलाएं, भगवान राम की लीलाएं, इनका वर्णन आप हजारों सालों से कर रहे हो और जब भी आप थकते नहीं। तो भगवान राम प्रकट हुए थे त्रेता युग के आरंभ में। त्रेता युग चला था 12 लाख सालों के लिए, उसके बाद आया द्वापर युग जो चला था आगे के 8 लाख सालों के लिए। तो 20 लाख साल लोग हो गए त्रेता युग और द्वापर युग, और कलयुग के 5,000 साल बीत चुके हैं। तो 20 लाख से अधिक समय पहले भगवान राम प्रकट हुए, और प्रकट हुए थे अपने 3 भाइयों के साथ। क्या थे भाइयों के नाम? भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। उनके पिता का नाम था दशरथ, राम की माता का नाम था कौशल्या, पर दशरथ महाराज की 3 पत्नियां थी। तो शुकदेव गोस्वामी 9वें स्कंद में भगवान राम की लीलाओं का वर्णन केवल संक्षेप रूप में ही प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा अनेक आत्मदर्शी व्यक्तियों ने और ग्रंथों में इनकी लीलाओं की रचना की है। एक है वाल्मीकि जी की रामायण, दूसरी है तुलसीदास जी की। हम जो वैष्णव भक्त हैं वो वाल्मीकि जी की रामायण को ज्यादा स्वीकार करते हैं। तो दशरथ महाराज राजा थे और उनकी इच्छा थी कि वो राज्य की जिम्मेदारी दें किसे, सबसे बड़े पुत्र राम को। तो औरतों में थोड़ा द्वेष और ईर्ष्या होती है एक दूसरे के प्रति। तो पूरा अयोध्या, भगवान राम कहां प्रकट हुए थे, अयोध्या में। तो महाराज दशरथ ने निर्णय कर लिया था कि अब मुझे बेटे राम को शासन देना है करने के लिए। तो एक पूरा अयोध्या सज गया था, सजा हुआ था, बैंड बाजा झंडे सब, क्योंकि अगले दिन सुबह अगले दिन सुबह भगवान राम का राजा अभिषेक होने वाला था। राजा अभिषेक को इंग्लिश में कहते हैं कॉरोनेशन। तो एक दिन पहले खकई, बड़ी होशियार औरत थी, एक समय महाराज दशरथ का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उस कठिन परिस्थिति में कैकेयी ने उनका सहयोग दिया था। तो कैकेयी ने उनका सहयोग दिया था तो महाराज दशरथ ने कहा कि तुम मांगो, मेरे से क्या मांगना चाहते हो। कैकेयी ने कहा मैं आपसे मांगूंगी पर आज नहीं, ठीक समय पर। कैकेयी के हृदय में इच्छा थी कि उनके बेटे भारत को का राजा अभिषेक हो। तो जब राजा अभिषेक की तैयारी हो रही थी भगवान राम की, तो कैकेयी गई महाराज दशरथ के पास और कहने लगी, आपको याद है कि आपने कहा था कि मेरी एक इच्छा को पूरी करोगे, मैं आपसे कुछ भी मांग सकती हूं, तो अब मैं आपसे मांगना चाहती हूं। दशरथ महाराज ने कहा मांगो मांगो, मैंने तुम्हें वचन दिया है, जो तुम मांगोगे मैं पूरा करूंगा। तो उसने कहा कि मुझे ये दीजिए वर कि मेरा बेटा भारत राजा बने और राम को आप जंगल में वनवास में भेज दो 14 सालों के लिए। तो जब दशरथ ने ये सुना, एक प्रकार से उनका हार्ट अटैक हो गया, क्योंकि उनकी हृदय की इच्छा थी कि उनका बेटा राजा बने। पर प्राचीन समय में जो क्षत्रिय राजा थे वो अपने वचनों का पालन करते थे। तो राजा ने कहा, राजा मजबूरन उसने बेटे राम को बुलाया और कहा, बेटा मेरी ये इच्छा है कि तुम कल जंगल में चले जाओ 14 सालों के लिए। और बेटे ने तुरंत स्वीकार कर लिया। बेटे ने ये नहीं कहा, पिता ये कैसे करूं, मैं पूरा शहर राह देख रहा है कि मेरी अभिषेक होगी कब, पूरा शहर सजा हुआ है ना, कोई और होता तो वो ऐसे ही कहता। भगवान के अनेक गुण हैं, जिनमें एक गुण है ऐसी मात्रा में त्याग विहार किया। तो भगवान राम ने ये त्याग भी प्रकट किया, जैसे ही कहा पिता ने जाओ जगह में, महाराज दशरथ तुरंत, भगवान राम तुरंत ही तैयार हो गए। तो भगवान शिव पराश मुनि जी के अनुसार, आप जानते हो पराश मुनि जी कौन है, कोई नहीं जानता। हाँ, यस गुड बॉय, व्यासदेव के पिता। तो व्यासदेव के पिता पुराश मुनि ने कहा है कि भगवान शब्द उनके लिए उपयोग किया जा सकता है जिनमें छह प्रकार के गुण हो एक साथ असीम मात्रा में। ऐश्वर्य समाग्रस्य वीर शाश्रय ज्ञान बेरा ज्ञावाशाय सन्न भागा के दिन। उसे सबसे धनी होना चाहिए, सबसे ज्यादा खूबसूरत, सबसे ज्यादा वीर, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा ज्ञानी और सबसे ज्यादा त्यागी। जिस व्यक्ति में छह प्रकार के ऐश्वर्य हों एक साथ, उसी व्यक्ति को हम भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। आज के जमाने में कई संत महात्मा कहते हैं हम भगवान हैं, कहते हैं ना, तो इस भगवान से पूछा कुछ चमत्कार तो दिखाओ, आपका वर्णन है क्या शास्त्र में? हम केवल उस व्यक्ति को भगवान स्वीकार करते हैं जिनका वर्णन हो शास्त्र में, ये नहीं कि किसकी कल्पना है। तो भगवान राम 14 सालों के लिए कहां गए? जंगल में। कैकेयी बहुत होशियार थी, उसने भगवान राम को कहा वनवास में जाने के लिए बहुत दूर दूर के जंगल में। क्यों? उन्हें चिंता थी, प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर मेरा राम शहर में ही रहेगा अयोध्या में तो किसी समय भी कुदेता कर देगा। आप कुदेता समझते हो? कुदेता मतलब कि समझो आप राजा हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, पर मिलिट्री आती और कहती है बंदूक के दम पर हमको दो तुम्हारा पद, नहीं तो कई बार होता ना ऐसे जबरदस्ती हम पद ले लेते हैं। तो कैकेयी को डर था कि अगर भारत राजा बन भी गया और अगर राम यहां ही रहेगा तो किसी समय भी आकर उनके बेटे को बाहर कर सकता है। और देखा 14 सालों के लिए, क्यों? 14 साल में उसका बेटा अच्छी तरह स्थापित हो जाएगा राज्य में। तो भगवान राम क्योंकि स्वयं भगवान थे, उन्होंने अद्भुत लीला प्रकट की। अद्भुत लीला का अर्थ है जिसकी तुलना ना कोई कर पाया है, ना कोई कर पाएगा। भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं वो अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने एक समय जब यशोदा माता ने कहा क्या तुमने मिट्टी खाई है, और बेटे ने कहा नहीं, झूठी शिकायत आपको की है। मां ने कहा मुंह खोल के बताओ। जब बेटे ने मुंह खोला तो क्या देखा मां ने? पूरे ब्रह्मांड, गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया बाएं हाथ के छोटे उंगली के नाखून के बल पर। तो भगवान राम ने भी इस प्रकार अद्भुत लीला प्रकट की। थोड़ी देर पहले, 1 साल पूर्व, मैं एक इंटरफेथ डायलॉग में था दिल्ली में, तो वहां एक सन्यासी थे जो कि पहले बड़े पुलिस के ऑफिसर थे, तो कहने लगे मुझे स्वामी जी व्हाई डू यू से देयर इज ओनली वन कृष्णा, स्वामी जी आप क्यों कहते हो एक ही कृष्णा है, आप और हम भी तो कृष्णा हैं, आप क्यों कहते हो कोई कृष्णा नहीं हो सकता। मैंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने दिव्य लीला प्रकट की थी, आप कोई अद्भुत लीला प्रकट कर सकते हो? मैंने कहा जैसे उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया इत्यादि। तो कहने लगे क्योंकि हमने आज से अद्भुत लीला प्रकट नहीं की तो इसका यह अर्थ नहीं कि कल नहीं कर सकेंगे। तो मैंने कहा आपको कितने साल चाहिए, 30, 40, 50, 60 लिख के दो, 50 साल में आप गोवर्धन पर्वत को उठाने के योग्य हो जाओगे। तो ये जो आज के कलियुग के भगवान हैं, वो तो एक बाल्टी भी भरी हुई मुश्किल से उठाते हैं, भगवान तो पूरे पर्वत को उठाते हैं। तो भगवान राम ने भी इसी प्रकार अद्भुत लीला प्रकट की। कैसे? जब सीता को पति ग्रहण करने का समय था सीता का, तो सीता जो के पिता ने शिव जी के एक धनुष को लेकर आए थे। वो धनुष इतना भारी था कि उसे उठाने के लिए 300 व्यक्तियों की आवश्यकता थी। कितने?
300।
भगवान राम आ गए, एक दिन वो धनुष को तोड़ दिया। जैसे कि एक हाथी एक गन्ने को तोड़ता है, तो फिर रावण, रावण कौन था, भक्त था या राक्षस था? था वो भक्त, भक्त था पर राक्षस का रूप ग्रहण किया था भगवान की लीला को ज्यादा मधुर बनाने के लिए। तो रावण ने सुना था कि सीता देवी बड़ी खूबसूरत है। असल में जब भगवान राम जंगल में जा रहे थे, सीता ने कहा मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूं। भगवान राम ने कहा तुम राजा की बेटी हो, तुम कहां मेरे साथ जाओगे जंगल में इन कठिनाइयों को अनुभव करने के लिए। सीता ने कहा नहीं, मैं यहां की पत्नी हूं। वो भी गए। फिर भाई लक्ष्मण ने कहा हम भी चलेंगे आपके साथ। तीनों गए जंगल। रावण को जब सूचना मिली सीता की खूबसूरती का, रावण का अर्थ है जो दूसरे को कष्ट देता है, दुख देता है, समझे। रावण के कितने सिर थे? 10 सिर थे। और जो दूसरे को कष्ट देता है, तो रावण आए थे सीता को किडनैप करने के लिए, और जो उन्होंने किडनैप किया वो असली सीता नहीं थी। असली सीता को कोई नहीं छू सकता, वो माया सीता थी। खैर, भगवान राम को श्रीलंका जाना पड़ा सीता की सुरक्षा के लिए, और भगवान राम गए समुद्र के तट पर, खड़े हुए 3 दिन के लिए ये सोचते हुए कि समुद्र उन्हें मार देगा, श्रीलंका पहुंचेगा। आजकल तो आप समुद्र के ऊपर हवाई जहाज में चले जाते हो, है कि नहीं? जुहू एयरपोर्ट से जो भी आप प्लेन पकड़ते हो, ये जुहू बीच के ऊपर उड़ के जाता है, क्योंकि ब्रिज बनाने की आवश्यकता नहीं। पर उन दिन में ये सुविधा नहीं थी। तो भगवान राम गए थे समुद्र के तट पर खड़े हुए 3 दिनों के लिए, पर समुद्र ने कुछ आदर नहीं दिया। फिर भगवान राम ने अपना क्रोध की लीला प्रकट की, क्रोधित नेत्रों से समुद्र में देखा। जब क्रोधित मां नेत्रों से देखा, गरम नेत्रों से, पूरा समुद्र कांपने लगा, और जितनी योनियां थी समुद्र में सब कांपने लगी। वे समुद्र आया, भगवान राम को प्रणाम किया और कहा माफ कर दो, मैं आपकी महिमा नहीं पहचान पाया था, मेरे में अहंकार था। और फिर भगवान राम ने, भगवान राम की एक सेना थी, क्योंकि वो जाने थे कहा श्रीलंका, और श्रीलंका में रावण की सेना थी और भगवान राम जा रहे थे श्रीलंका, तो उनकी सेना में कौन थे? केवल बंदर, बंदरों की सेना थी। आप तो कभी वृंदावन जाओ तो आप देखते हो बंदरों की सेना, एक बंदर के गोवर्धन पर्वत करो, गोवर्धन परिक्रम करो तो अनेक स्थानों में बंदर दिखते हैं। तो भगवान राम की सेना में थे केवल बंदर, केवल राम और लक्ष्मण में धनुष को चलाने की योग्यता थी, और बाकी जो सेना में थे उन्होंने पहाड़ की चोटियों को तोड़कर उठाकर सागर में, समुद्र में फेंका। अक्सर अगर आप समुद्र में कुछ फेंकोगे तो क्या होता है, उसे डूब जाता है। अब जू बीच में जाइए और पत्थर फेंके और डूब जाएगा, पर भगवान राम ने जब पत्थर फेंके और हनुमान और उनके दूसरे बंदरों ने फेंके पहाड़ की चोटियों को, वो डूबे नहीं पर तैरने लगे, क्योंकि तैर कर उन्होंने ब्रिज बनाया। देखो ये भगवान के लिए असंभव नहीं है। आज देखिए भगवान की प्रकृति के द्वारा आज इस पृथ्वी में लाखों ग्रह हैं, there are millions of planets, और ये सारे ग्रह जो हैं आकाश में फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। कैसे तैर रहे हैं? प्रकृति के बाय द मैनिपुलेशन ऑफ एयर। जैसे कि किसी एक समय हजारों हवाई जहाज उड़ रहे हैं, आजकल भारत में भी बहुत हवाई जहाज की कंपनियां हो गई हैं। तो आप जैसे आज सुबह दिल्ली से आ रहे थे, हमने प्लेन को खड़ा होना पड़ा आधा घंटा लाइन में, क्योंकि अनेक और हवाई जहाज पहले उड़ रहे थे। आप अमेरिका में जाओ, न्यूयॉर्क, शिकागो, बड़े शहरों के एयरपोर्ट में, हवाई अड्डे में हर पांच सेकंड में यहां हवाई जहाज लैंड कर रहा है या ऊपर जा रहा है। तो एक साथ आज आकाश में हजारों हवाई जहाज उड़ रहे हैं, है कि नहीं? हजारों, पर ये हवाई जहाज कई बार गिर भी जाते हैं। पर भगवान की प्रकृति के द्वारा लाखों गृह ब्रह्मांड में तैर रहे हैं, वो गिरते नहीं कभी। कभी आपने पढ़ा इतिहास में कोई प्लैनेट गिर गया था? हवाई जहाज का पढ़ते हो, पर गृह लोक का पढ़ा आपने कभी नहीं, क्योंकि उसके इंजीनियर है भगवान स्वयं, और ये भौतिक हवाई जहाज के इंजीनियर है भौतिक वाले। तो फिर यहां भगवान ने एक और अद्भुत लीला प्रकट की, और भगवान पहुंचे कहां? श्रीलंका। रावण की इच्छा थी कि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो, पर वो स्वर्ग जाना चाहते थे सीढ़ी बनाकर। आज स्वर्ग में जाना तो जाइए, पर आपको स्वर्ग में जाने के लिए क्या आध्यात्मिक तैयारी करनी चाहिए। पर रावण की इच्छा क्या थी? स्वर्ग में जाना सीढ़ी के द्वारा, ये उनकी योजना थी। तो रावण के साथ युद्ध हुआ। भगवान की सेना में तो केवल बंदर थे, केवल लक्ष्मण और राम धनुष चलाना भी जाते थे, और रावण की सेना में क्या था? हर प्रकार की आधुनिक सेवा, आधुनिक हथियार। प्राचीन समय में एक हथियार था जिसे हम ब्रह्मास्त्र बुलाते थे, वो ब्रह्मास्त्र का को छोड़ा जाता था मंत्रों के उच्चारण से। जैसे आजकल बॉम्ब छोड़ने के लिए आपको हवाई जहाज चाहिए, हवाई बॉम्बर्स, है ना, हवाई जहाज से आप बॉम्ब छोड़ते हो, मिसाइल भी लॉन्च करते हो तो मिसाइल लॉन्चर चाहिए। तो ब्रह्मास्त्र को छोड़ते थे मंत्रों के उच्चारण से, और वो ब्रह्मास्त्र में इतनी शक्ति थी कि समझो आप 50 लोग बैठे हो यहां, तो आपने मारना है चौथे व्यक्ति को बाएं तरफ से, तो उसी व्यक्ति को मारेगा। आजकल जो बॉम्ब फेंकते हैं, कई बार बॉम्ब 2 मील दूर जाके गिरता है और निर्दोष व्यक्तियों को मार देता है। तो रावण के सेना में हर प्रकार की सुविधा थी, प्रसिद्ध सेनापति थे, और रावण की सेना में सब सुविधा थी। फिर भगवान का युद्ध हुआ, किसकी विजय हुई? भगवान राम की। तो प्रभुपाद जी इस कथा में समझाते हैं इस विषय पर कि दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक है दैवी शक्ति, एक है भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति मतलब कि हम अपना भौतिक प्रबंध कर रहे हैं उसमें विश्वास है। आध्यात्मिक शक्ति का अर्थ है कि आप भगवान की दिव्य शक्ति में विश्वास करते हो। जैसे कि कौरवों और पांडवों के युद्ध में पांडवों के पास केवल कृष्णा था, कौरवों के पास क्या था? सब सुविधा, भीष्मदेव, सब प्रसिद्ध सेनापति। विजय किसकी हुई थी? पांडव की। तो इसी प्रकार भगवान राम के सेना की विजय हुई, रावण का वध हुआ और भगवान ने रावण के भाई को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंपी। जब रामचंद्र जी लौटे अयोध्या में 14 साल के बाद, महाराज भारत जो राज्य कर रहे थे, भारत जो थे उनका इतना गहरा स्नेह था उनके भाई के प्रति कि जब वो उन्हें सूचना मिली कि भगवान राम लौट रहे हैं, तो भारत अपने मंत्रियों के साथ आए भगवान राम का स्वागत करने आए। जितने समय के लिए भगवान राम वनवास में थे जंगल में, भारत ने उनके खड़ाओं को राज्य की गद्दी में रखकर राज्य किया। दूसरे शब्द में राज्य के उन्होंने किसके तरफ से? भगवान राम की तरफ से। और क्या खाया उन्होंने? राइस, पकोड़ा, गुलाब जामुन? नहीं, वो खा रहे थे क्या? वो खा रहे थे जो गौमूत्र में बनी हो, बस। 14 सालों के लिए और कुछ नहीं खाया उन्होंने। तो भगवान राम का राज्य आरंभ हुआ। आज का विषय है राम राज्य। तो भगवान राम ने अपना शासन आरंभ किया और भगवान राम के शासन के समय समाज में कोई कष्ट नहीं था। सुखदेव गोस्वामी 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में कहते हैं, भगवान राम के शासन के समय कोई बुढ़ापापन नहीं था, कोई भय नहीं, कोई पछतावा नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई बहार नहीं, कोई सूखा नहीं, कोई भूकंप नहीं। आज क्या आप ये उम्मीद कर सकते हो? बुढ़ापा नहीं, कोई रोग पीड़ा नहीं, डॉक्टरों को ये अच्छा नहीं लगेगा, कोई रोगी नहीं बनेगा, पीड़ित नहीं बनेगा, तो कमाएंगे कहां से, है कि नहीं? और मृत्यु के समय भी वो खुद चुन सकते थे। आप समझे? अगर आपको ये सुविधा दे दे कि मृत्यु के समय आप खुद चुन सकते हो, वो नहीं मरना तो मत मरो, लोग चुनेंगे आज क्या कहेंगे? हम तो तैयार नहीं है, कल 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 करते जाएगा, है कि नहीं? व्यक्ति बूढ़ा है, चल भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता, कुछ योग्यता नहीं, वो डॉक्टर से क्या कहते? डॉक्टर जी थोड़ी देर और हमें जिंदा रखो। जैसे कि डॉक्टर जी के हाथ में कोई चाबी है। तो हाँ, तो राम राज्य के समय मृत्यु के समय भी व्यक्ति खुद चुनते थे। भगवान राम पूरी प्रजा को अभी उलाद के समान पाल रहे थे, समझे आप, उलाद के समान, जैसे एक पिता अपनी उलाद को पालता है। भगवान राम पूरी प्रजा को क्या कर रहे थे, पाल रहे थे, और पूरी प्रजा राजा को देख रही थी पिता के रूप में। आज ये संभव है क्या? आगे प्रधानमंत्री आपको अपनी औलाद ऐसे मानते हैं क्या? आप उनके पिता के रूप में मानते हो? नहीं। ये जो डेमोक्रेसी है, गुरुजी कहते थे दिस इज डीमन क्रेसी। तो भगवान राम वो चाहते थे कि उनका पूरा ही प्रजा सुखी रहे। कई बार रात को वेश बदलकर वो अयोध्या की सड़कों में घूमते थे ये देखने के लिए क्या कष्ट है प्रजा को। आज के जमाने में आप आओ कुछ आलोचना करो सरकार की तो आप जेल में पहुंच जाते हो। भगवान राम वेश बदलकर जाते थे देखने के लिए प्रजा को कोई दुख तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है, किसी प्रकार का रोग तो नहीं है। और अयोध्या की सड़कों को रोज धोया जाता था गुलाब के सुगंधित जल से, परफ्यूम वाटर, गुलाब के जल सुगंधित जल से। आज हमें सबसे धनी देश है विश्व का अमेरिका, अमेरिका की सड़कों को भी गुलाब की सुगंधित जल से नहीं धो पाते, उनका दीवाला उड़ जाएगा। अयोध्या की सात सड़कों को रोज धोया जाता था किससे? गुलाब की सुगंधित जल से। और भगवान राम खूब देखते थे सफाई कैसे हो रही है, खुद वो देखते थे कि ठीक काम हो रहा है कि नहीं। जब भगवान राम राजा बने उन्होंने और सीता देवी जी ने अपने सारे गहने और संपत्ति जो धरती थी जमीन थी बांट दी ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों ने ये जमीन ली और फिर जमीन स्वीकार करके इसे वापस बांट दिया। किसे? ब्राह्मणों ने जमीन ली भगवान राम से फिर वापस लौटा दिया। किसे? राजा को। राजा से जमीन ली जमीन लौटा दी। देखो क्या स्वभाव। और तो इस प्रकार भगवान राम का शासन था। एक समय भगवान राम गए थे यात्रा करने के लिए अयोध्या के बाहर। एक ब्राह्मण था जो रोज खाना ग्रहण करने से पहले भगवान राम का दर्शन लेता था और दर्शन लिए बिना कुछ खाता नहीं था। तो दो तीन हफ्ते जब भगवान राम अयोध्या के बाहर थे ये ब्राह्मण भूखा रहा प्यासा रहा। जब ये लौटा तो लक्ष्मण ने कहा इस ब्राह्मण ने कुछ खाया नहीं है तीन हफ्ते से क्योंकि आपका दर्शन नहीं मिला। तो भगवान राम ने अपनी ही मूर्ति जो उन्होंने अलमारी के अंदर रखी थी निकालकर उस ब्राह्मण को दे दी और कहा आज से तुम्हें इस विग्रह की उपासना करो, इसमें और मेरे में अंतर नहीं। जैसे आप लोग जब राधा राजधानी जी के मंदिर जाते हो तो वहां देखते हो सीताराम लक्ष्मण हनुमान का विग्रह भी है ना, तो इस विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए मूर्ति का पत्थर है, नहीं, भगवान स्वयं अपने आर्च विग्रह रूप में प्रकट होते हैं। और इस आर्च विग्रह और परम भगवान में कोई अंतर नहीं। तो प्रभुपाद जी नौवें स्कंध में इस लीला का पर तात्पर्य की व्याख्या देते हुए कहते हैं कि जो सुख त्रेत युग में लोग इतने सुखी थे कि ऐसे लग रहा था कि सतयुग प्राप्त हो गया है, इतने खुशी थे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो सुख भगवान राम ने जो सुख हमें राम राज्य के समय त्रेत युग में प्राप्त हो रहा था वही सुख इस कलयुग में प्राप्त हो सकता है अगर आप इस महामंत्र का उच्चारण करो। महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा
हरे राम हरे राम 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 हरे।
अगर आप यह महामंत्र का उच्चारण करो तो आपको इस कलयुग में वही सुख प्राप्त हो सकता है जो कि चैतन्य में प्राप्त हुआ था राम राज्य के समय। तो आज का विषय था राम राज्य। राम राज्य आजकल भारत में भी जब इलेक्शन का समय आता है पॉलिटिकल पार्टी कहती हैं हमें वोट दो हम तुमको राम राज्य देंगे। तो राम राज्य चाहिए तो क्या वोट नहीं दो, हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करो। आप देखते हो भौतिक स्थिति में गर्मी में सर्दी पैदा कर सकते हैं सर्दी में गर्मी, जैसे कि ये मिडल ईस्ट के जो देश हैं वहां बहुत गर्मी है। फिर आप जाओ मिडल ईस्ट में दुबई शारजा कुवैत आपको गर्मी लगती नहीं है, आप क्योंकि वो तो रेत स्थान है क्यों नहीं गर्मी लगती। बिल्डिंग दफ्तर आपके एयर कंडीशन है, घर एयर कंडीशन है, बस एयर कंडीशन है, बाजार एयर कंडीशन है, सब्जी की दुकान एयर कंडीशन है, टैक्सी एयर कंडीशन है, मोटर एयर कंडीशन है, तो जहां जाओ एयर कंडीशन है तो आपको गर्मी महसूस ही नहीं होगी। आप रशिया के साइबेरिया में जाओ वहां बहुत ठंड है -40, पर वहां जाओ वहां तो ठंड लगेगी पर अंदर जाओ स्वेटर की भी जरूरत नहीं, हीटिंग से गर्मी पैदा कर दिया। तो जैसे भौतिक स्थिति में हम गर्मी में सर्दी बना देते हैं एयर कंडीशनर से और हीटर से सर्दी में गर्मी है कि नहीं, तो उसी प्रकार इस कलयुग में आप राम राज्य का सुख या सत्ययुग प्राप्त कर सकते हो। कैसे? ये महामंत्र के उच्चारण से। तो आज इस भौतिक समाज में हम सब निराश हैं, बेचैन हैं, दुखी हैं, और इसका कारण क्या है? हम भगवान की शिक्षा से दूर जा रहे हैं। तो हमें अगर सुख चाहिए तो क्या चीज की आवश्यकता है? यह महामंत्र के उच्चारण। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं, उन्होंने एक समय सद्बुज का रूप प्रकट किया था जिसमें भगवान राम के दो हाथ थे, भगवान कृष्ण के और चैतन्य महाप्रभु जी के। तो इस कलयुग का चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है हरिनाम 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 एव केवलम हेलो नस्ते व नस्ते व नस्ते व गति था, हरे का नाम लो हरे का नाम लो हरे का नाम। तो आप सब जो यहां आए हो सबसे निवेदन है कि हरे कृष्ण मंत्र का अपना हो। जो नौकरी कर आप ऐसे पढ़ाई कौन कौन करता है? वे आर यू स्टैंडिंग? यू हमने भी आर स्टूडेंट्स एंड बाकी जो वो काम करते हो सब। तो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति में रहते हुए आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हो। कैसे? महामंत्र के उच्चारण से। तो आप सबको सौभाग्य है आप इसका न्यूज फॉर्म का लाभ उठा रहे हो। इसका न्यूज फॉर्म का उद्देश्य क्या है? कि आपको वैसी शिक्षा दी जाए जिसके द्वारा आप जहां हो और रहते हुए जीवन को सफल बना सको। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? हे अर्जुन मेरा स्मरण करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो। तो आप भगवान का चिंतन करते हुए हरे नाम का उच्चारण करते हुए जो भी आपकी भौतिक जिम्मेदारियां हैं उनका पालन करो, महामंत्र का जाप करो, शास्त्रों का ध्यान करो, इस प्रकार आप अपने जीवन को सफल बना सकोगे। बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ठीक है, एनी क्वेश्चन? Some type of what?
Lord Ram was in kind of a vyog, you know, even when he knew that, you know, this is Maya Sita who has gone.
He wanted to set the example. Ravan needed to be punished for what he had done before. The point is, the real Sita cannot be touched by anyone but Lord Ram. You follow? Yes?
Maharaji, you told one incident that Ravana was going to build one.
He wanted to build a staircase to heaven.
Is the heaven somewhere upstairs?
Yes. Ravan did not think the necessity of doing pious activities. He said, why should I do pious activities? I'll build a staircase, just like our scientists are telling us. We'll give you journey to on space to other planets. But the way to go to other planets is by spiritual preparation. Prabhupada wrote a book called Easy Journey to Other Planets, in which he says, the desire to travel to other planets is nothing unnatural. But the means to travel is spiritual preparation.
This about the Hanuman's brother when Rama killed him, when he shot an arrow from behind. Can you explain me what was the whole ideology behind? Am I right then?
Hanuman's brother, that doesn't feature in the Srimad Bhagavatam. Whatever I told you is from the presentation in the Srimad Bhagavatam that we follow. In the Bhagavatam, there are only two chapters that describe Lord Ram's Leela. And only few of his Leelas are focused in that. So how many of you chant Hare Krishna regularly? Every day? This is a mantra for peace and happiness. Today everybody is unhappy, is that right? They have more mobile phones, fancy cars, big houses. They say everybody is getting rich in India now. But is that making people happy? The real happy people are those who chant Hare Krishna. So all of you, how many of you came here for the first time today? How did he come? Somebody invited you?
My daddy is a life member.
Oh.
He should tell me to go regularly.
He's a real good life member then. The best life member is one who is selling his children. So you finally came. What do you do? Study or work?
I'm working on a software firm.
How many of you work in IT? Okay, not too many. So, what do you do now? I'll just find myself that I want to go. Yeah? What do you do, Kirtan? We had Ram Navami celebration in Delhi last time. We went down to 12 o'clock.
This guy is Gopalki Maharaj Ji.
Yes!
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare.